मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे प्रारंभिक परीक्षा की योजना के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले दो घटनाओं को देख लेते हैं जो रेडियो न्यूज से संबंधित हैं। रेडियो न्यूज में आपने एक समाचार सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभियान की शुरुआत करेंगे और उसका नाम है कैच द रेन। कैच द रेन, वर्षा को पकड़ लो, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है जल संचयन अभियान। जल संचयन यानी कि जल का संचय किया जाए, राइट। ये जो अभियान है ये 30 नवंबर तक चलेगा, तो यूं कह लीजिए कि इसकी शुरुआत अभी मानसून शुरू होने से पहले से लेकर के मानसून के समाप्ति के कुछ समय बाद तक का यह अभियान है। तो देखिए, गर्मी के दिनों में अभी इसकी जरूरत इसलिए है कि हम पानी को बचाएं। देखिए, संचय करने का मतलब ये केवल नहीं कि जो वर्षा का पानी है उसी को बचाएं, हालांकि ठीक है, आप जो अभियान का नाम है उससे आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि केवल रेन को कैच करें, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वो ये है कि जो पानी हमारे पास है इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, मितव्ययतापूर्वक इस्तेमाल करें, तो वह भी एक तरह का संचय ही होगा। और इसके बाद जब मानसून की बारिश होगी उस समय के वर्षा को रोकने की कोशिश करें, और इसके बाद कुछ समय बाद तक भी आप जानते हैं कि कहीं कहीं बारिश होती रहती है, तो कुल मिलाकर के ये है जल संचय अभियान। जहां तक परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावना है, चूंकि इस साल के मेन एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैं ये तो नहीं मान करके चलता कि ये फिर से रिपीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ये अभियान है तो इसके बारे में आपकी जानकारी होनी ही चाहिए। और आज के अखबारों में आप देखेंगे कि बहुत से अखबारों ने इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे हैं, कुछ ने आर्टिकल्स लिखे हैं और कुछ ने अतिरिक्त मटेरियल भी उपलब्ध कराया है। तो मेरी सलाह है कि फिर भी आप उन्हें पढ़ें और एक छोटा सा नोट तैयार कर लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ रहे होते हैं, आईएएस में बैठ रहे होते हैं, इसके साथ ही साथ वो स्टेट सिविल सर्विस में भी बैठ रहे होते हैं, तो अगर आईएएस में नहीं पूछे जाने की संभावना है तो ये मत मान करके चलिए कि किसी में भी नहीं पूछा जा सकता। दोस्तों, न्यूज में आपने एक और योजना का नाम सुना होगा, नगर वन योजना। नगर वन योजना, इसका इंग्लिश में भी नाम है नगर वन स्कीम। इसका उल्लेख हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं जावड़ेकर साहब, उन्होंने एक संदर्भ में किया है। ये योजना पिछले वर्ष लागू की गई थी, पिछले वर्ष, राइट। इस योजना के बारे में बस दो तीन बातें आपके दिमाग में रहे तो अपने आप में पर्याप्त होगा, अलग से बहुत जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी योजना है। नाम ही देखिए, नगर वन योजना, यानी कि नगरों में कैसे वन लगाए जाएं, क्योंकि वन नगर के कारण उजड़ते चले जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि वनों को काट करके नगर बसाए जा रहे हैं, तो कैसे वहां वन लगाए जाएं, क्योंकि देखिए जो वन है उनको एक तरह से हमारे जीवन, हमारे शरीर का फेफड़ा कहा जाता है, वन हमारे लिए सांस लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो नगर वन है वो लंग्स ऑफ द सिटीज है, तो हमें इन लंग्स को बनाए रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इसके तहत 200 शहरों को शामिल किया गया है जहां वनों का विकास किया जाना है, वन लगाए जाने हैं, बस यही है नगर वन योजना। तो ये जो वन लगेंगे, स्वाभाविक है कि ये जो फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उन पर लगेंगे, या अगर फॉरेस्ट की जमीन वहां नहीं है तो जो लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हैं वो अपनी तरफ से कह देंगे कि भाई यहाँ वन लगाया जाए, तो वहाँ वन लगाए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने महसूस किया होगा कि अब जितनी भी नई योजनाएं आ रही हैं उसमें पीपल पार्टिसिपेशन को बहुत महत्व दिया जा रहा है, इसे बल्कि आप नोट कर लीजिए ज़्यादातर योजनाओं में है कि हम लोगों को शामिल करिए, ये नहीं कि सरकार अकेले करे या कोई अथॉरिटी है वो करे, नहीं, लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। तो इसी पैटर्न पर इस योजना में जिनको शामिल किया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है ही है, वो तो नोडल डिपार्टमेंट होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर म्युनिसिपल वहां की जो लोकल बॉडी होगी वो शामिल होंगे, एनजीओ शामिल होंगे इसमें, जो कॉरपोरेशंस कॉरपोरेट्स वगैरह होते हैं उनको शामिल किया जाएगा, और स्थानीय नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा, और इस तरीके से नगर वन बनाया जाएगा। और इसके लिए जो धन होगा, फ्रेंड्स आपने शायद एक नाम सुना हो, कैंपा, या पढ़ा होगा। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिला दूं कि इसके बारे में एक अलग से लेक्चर है, कैंपा। बेसिकली यह है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक संस्थान है कह लीजिए, होता यह कि जैसे मान लीजिए कि कोई जंगल काटा जा रहा है, अब उस जंगल के काटने से नुकसान होगा, तो आकलन किया जाता है कि कितना नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो और जंगल काटना पड़ रहा है उसे, तो इससे कितना नुकसान होगा। तो उस फैक्ट्री वाले से कहा जाता है कि भाई इतना नुकसान होगा तो आप इतने नुकसान की भरपाई कीजिए, तो उतना पैसा दे देता है इस फंड में। तो इस तरह से एक फंड बनाया गया है और फिर उस फंड से उसकी भरपाई करने के लिए वन लगाए जाते हैं। तो यहां भी आप देखिए कि वन लगाए जा रहे हैं, तो ये जो पैसा आएगा वह इस फंड से पैसा आएगा। बस कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं, उसको ध्यान में रख करके मैंने ये बात आपके सामने रखी है। दोस्तों, ये थे रेडियो न्यूज से संबंधित दो इंपॉर्टेंट खबरें, और अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है प्रारंभिक परीक्षा की योजना। फ्रेंड्स, लगभग 3 महीने और कुछ दिन प्रारंभिक परीक्षा के रह गए हैं। सही मायने में आप यूं कह लीजिए कि 3 महीने ही रह गए हैं, राइट? मेरी एक आप सबसे बहुत ही विनम्र सलाह है और बिन मांगी सलाह है, और वो ये कि हालांकि 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन बकायदे आपको इन 3 महीनों का इस्तेमाल बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, प्लैंड वे में करना चाहिए। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि स्टूडेंट प्लान नहीं बनाते, उन्हें लगता है कि ठीक है हम तैयारी करते जाएंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा और बस बात बन जाएगी। कुछ की बात बन भी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिनकी बात बन गई है, अगर उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाया होता तो शायद बात और भी ज़्यादा बन गई होती। हम उस पार्ट को नहीं देख पाते, जो हमें मिल जाता है वह तो दिखाई देता है, लेकिन जो खो गया है, जो और मिल सकता था, वह दिखाई नहीं देता। जबकि सीधी सी बात है कि आप जितना भी बड़ा काम करना चाह रहे हैं, योजना बनाना उतनी ही ज्यादा उसकी जरूरत होती चली जाती है। और मैं ये मान करके चलता हूं फ्रेंड्स कि आईएएस की तैयारी करना अपने आप में एक बड़ा काम है। देखिए, जहां तक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का सवाल है, तो इससे बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कम से कम भारत में तो नहीं ही है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में आपको योजना बनाकर काम करना चाहिए। यहां तो मैं प्रारंभिक परीक्षा की योजना की बात कर रहा हूं, अदरवाइज सच पूछे तो आप पूरी अच्छे तरीके से पूरी की पूरी परीक्षा का आपको प्लान करना चाहिए कि मेरी अभी इतनी एज है, मुझे इतने अटेम्प्ट देने हैं, इतने साल मुझे इसके लिए लगाने हैं, और फिर कैसे मैं इस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा, उसकी एक व्यापक योजना बनानी चाहिए, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन चलिए, वो बाद की बात है, यहां प्रारंभिक परीक्षा की तो आपको बकायदी योजना बनानी ही चाहिए। अब आप देखिए कि जो आपकी योजना बनेगी उसके बेस में क्या होगा। मैं योजना कैसे बनाएंगे आप मैं नहीं बताने जा रहा हूं, आप अपने ढंग से बताइए। मैं उसके लिए आपको कुछ कंटेंट देने जा रहा हूं, कुछ तत्व उसके बताने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जब भी हम किसी भी बात की योजना बनाएं तो हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो कभी भी हमारी योजना सही नहीं हो सकती, ये नींव होती है। अब आप कहेंगे प्रारंभिक परीक्षा की क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रारंभिक परीक्षा बैठना है, पास होना है, यही हमारा उद्देश्य है? नहीं, थोड़े से और गहराई में जाइए, तब आपको पता लगेगा कि नहीं, प्रारंभिक परीक्षा के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और होते ही हैं, और सच पूछे तो होने ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, तब आपकी योजना अलग होगी। दूसरी बार बैठ रहे हैं तो आपकी योजना अलग होगी। अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली है तो योजना अलग होगी। मेंस की तैयारी आपकी नहीं हुई है तो योजना बिल्कुल अलग होगी। अगर आप करंट अफेयर्स से शुरू से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहे हैं, प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से, तो योजना का स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ करके अभी तक चल रहे हैं, तब आपकी तैयारी का स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? जैसे उदाहरण के तौर पर चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, कोई भी सेकेंड या थर्ड, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बैठे थे, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की थी तो, और अगर आपने उस समय मान लीजिए कि जो मॉक टेस्ट के लिए पेपर्स आजकल आने लगे हैं वो आपने सॉल्व किए थे, तो इस साल आपके लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्यों महत्वपूर्ण नहीं होगा? इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें अभी हैं, मॉक टेस्ट जो आप सॉल्व करते हैं, मैं ये मान करके चलता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि उसका उद्देश्य होता है अपने दिमाग के वातावरण को एग्जामिनेशन हॉल के वातावरण के अनुकूल बनाना, ताकि हमारा दिमाग उन जटिलताओं से खेलते खेलते उसका अभ्यस्त हो जाए। बस अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 35 मॉक टेस्ट सॉल्व किए जिसमें 3,500 क्वेश्चन थे और उस 3,500 क्वेश्चन में से 2-4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो वो आपके काम के नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं है वो। तो बेसिकली मेंटल एनवायरनमेंट से उसका संबंध होता है। तो पहले आप मॉक टेस्ट कर चुके हैं, आपका मेंटल एनवायरनमेंट बन चुका है, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ चुके हैं, तो वहां भी आप, वहां तो आपने बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस साल आप बिल्कुल मॉक टेस्ट सॉल्व मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपके दिमाग ने उसे ग्रहण कर लिया है। तो अब आप अगर 5-7-10 भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। तो अब आप देखिए कि जब आप योजना बनाएंगे तो उस योजना में अब ये मॉक टेस्ट कि मुझे 30 मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, वो उसमें से गायब हो चुका होगा। इसका समय बचेगा। अब इसका समय बचेगा तो अब डिपेंड करेगा कि आपको किन किन के लिए समय की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आपके मेंस की तैयारी नहीं हुई है, तो सीधी सी बात है कि फिर आपके लिए प्री एग्जामिनेशन उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मेंस में आप सक्सेस होने की संभावना मान करके चलेगी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो आप 3 महीने का प्लान बनाएंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें मैं 4 पिलर्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहता हूं, उसमें से अगर कोई भी पिलर आपका कमजोर है तो आपको ज्यादा समय उसके लिए देना चाहिए, दूसरों के लिए समय आपको घटा देना होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती है कि आपकी स्थिति क्या है। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि मैं आपके बिहाफ पर प्लान बनाने नहीं जा रहा हूं, वो आपको सूट नहीं करेगा। प्लान आपको ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को जितना ज्यादा जानते हैं उसका 1% भी मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्लान बनाया जाना चाहिए। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप 3 महीने का अपना प्लान बना लें और इसके बाद उस प्लान को फॉलो करें। आप देखेंगे कि प्लान बना लेने के बाद आपका, आपके अपने दिमाग पर कैसे आपके खुद का कंट्रोल हो जाता है। आप फिर परेशान नहीं होंगे इधर उधर सोच सोच करके, बहुत ही ठोस तरीके से फिर आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं शक्ति चरण, शिवानी पवार, अलका चंदर पंजाब से, चंदन सिंह कंवर उत्तराखंड से, विजय शेरावत जयपुर से और पारुल रानी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।